समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
कार्यक्रम परिक्रमा में अभिवादन स्वीकार कीजिए सर फिरोजी का। दिल्ली हाट में इस समय शिल्प दीदी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां देश भर से महिलाएं अपनी शिल्प कारीगरी का नमूना दिखाने के लिए आई हैं। कार्यक्रम में इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपको देंगे देश दुनिया के समाचार, अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से लेंगे दिन भर की हलचल, खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर, और उन खास हस्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। परिक्रमा के इस अंक में मेरे साथ हैं शगुन।
वेल हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम अलोंग लिसनर्स टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। दिस इज शगुन चोपड़ा विद सर फिरोजी एंड इट इज सैटरडे। यू मे वांट टू सिट डाउन, हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी, प्लग इन योर ईयरफोन्स इफ यू आर ट्रैवलिंग एंड टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ द रेडियो। वेल वट एवर यू मे बी डूइंग एंड वेर एवर यू आर, मेक श्योर लिसनर्स टू स्टिक अराउंड टिल द एंड एज वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर यू, नेमली लेटेस्ट न्यूज, ट्रिब्यूट्स, कैप्सूल्स एंड अ लॉट मोर इज कमिंग अप over the next 30 minutes. So let's get started with the headline, shall we?
Ji.
Prime Minister Narendra Modi says India has always been on the side of peace since the beginning of Ukraine conflict, returns home after successful tour of two countries.
केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से नेपाल बस दुर्घटना में पीड़ितों और जीवित बचे लोगों की वापसी की निगरानी के लिए काठमांडू पहुंची।
First reusable hybrid rocket of India, Rumi 1, launched from Chennai.
अमेरिका ने भारत को $52 मिलियन से अधिक मूल्य के उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध उपकरण बेचने की मंजूरी दी।
एंड एस इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। एंड नाउ इन आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया वी विल बी टेकिंग अ लुक एट द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। एंड टुडे एज सर फिरोजी टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, वी विल बी टॉकिंग अबाउट शिल्प दीदी महोत्सव। वेल फर्स्ट ऑफ लेट्स टॉक अबाउट वट यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिराज सिंह वेन ही विजिटेड द शिल्प दीदी महोत्सव, वट ही सेड। ही हैड एक्चुअली अ fortnight long marketing event, this Shilp Didi Mahotsav, a fortnight long marketing event which was dedicated to the Shilp Didi program, where Shilp Didis are being provided with an opportunity to showcase their crafts at Dilli Haat from 16th August. It actually started on 16 August 2024 and it will be ending on 31st August 2024. Union Minister of Textiles, Shri Giriraj Singh, he interacted with Shilp Didis to understand their challenges and also encouraged them to further develop entrepreneurship and utilize social media in their economic journey. He said that the Mahotsav provides a unique platform for the Shilp Didis to expand their market reach and attract new customers for their handicraft creations.
जी शगुन, देश में महिलाएं, खासतौर पर जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो हर क्षेत्र में सशक्त हो रही हैं। खासतौर पर अब उन्हें आर्थिक आजादी मिल रही है और ऐसे में शिल्प दीदी महोत्सव जैसे जो प्रोग्राम है वो महिलाओं को आर्थिक आजादी के और करीब ले जाने वाला रास्ता है। इस महोत्सव का उद्देश्य पूरे भारत में महिला कारीगरों के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने शिल्प दीदी पहल की सराहना करते हुए महिला कारीगरों को सशक्त बनाने, उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए जरूरी सहायता और ज्ञान प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस महोत्सव का उद्देश्य कार्यक्रम के तहत ई कॉमर्स के माध्यम से महिलाओं को अपनी आय बढ़ाना और मार्केटिंग के मौके देना है, क्योंकि शगुन आपके पास हुनर तो है लेकिन उसे दिखाने का मंच नहीं है।
Right.
तो ऐसे में जो शिल्प दीदी जैसे प्लेटफॉर्म मिलना जहां आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है, आपके हुनर के कद्रदान आपकी कला को देखेंगे और सराहेंगे, ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा अवसर है।
राइट, इट इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एज वी आर टॉकिंग अबाउट इट। एंड ऑल्सो द ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट अंडर द ईजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैज लॉन्च द शिल्प दीदी प्रोग्राम ऑन अ पायलट बेसिस फॉर 100 डेज। Now let's talk about the primary objective of this particular program. It is to foster, as Sir Firozi told us, economic empowerment and financial independence among female artisans throughout India. The initiatives commenced with e-training from June this year and include components of e-commerce onboarding, entrepreneurship development, regulatory and social media onboarding, and also marketing opportunities.
एक सर्वे में 100 महिला कारीगरों की पहचान की गई जिन्हें शिल्प दीदी कहा गया। ये महिलाएं 23 राज्यों के 72 जिलों से चुनी गई। कार्यक्रम में कुल 30 अलग अलग शिल्प कलाएं शामिल हैं, जो ये दिखाता है कि एक ही कला के कितने रूप हो सकते हैं। मंत्री के दौरे के दौरान कपड़ा सचिव, विकास आयुक्त और मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स वी हैव अ रिपोर्ट फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
Delhi Heart is observing Shilpa Didi Mahotsav, an event that celebrates women's empowerment. Shilpa Didis are being provided with the opportunity to exhibit their crafts. The highest priority is given to the financial independence and economic empowerment of women artisans. The Ministry of Textiles has launched the Shilpa Didi program on a pilot basis for 100 days. Talking to Akashvani, Shilpa Didi Shipra Ghosh expressed happiness for getting the opportunity to exhibit her products at the Mahotsav.
मैं एक आर्टिजन हूँ, मैं दिल्ली हाट में आई हूँ शिल्प दीदी महोत्सव में। मैं 40 से 50 लेडी मेरे पास काम करते हैं, पूरा हाथ के ऊपर जितना हैंडवर्क है वो काम करते हैं। मैं भी एक अवार्डी हूँ, मुझे स्टेट अवार्ड मिला है। अवार्ड जो मिला है मेरे को वो है कांथा, नुक्की कांथा। बंगाल का बेस्ड है ये डिजाइन और वर्क है। मेरा काम हो रहा है 3 जेनरेशन से।
Textile Minister Giriraj Singh attended the event and interacted with the Shilpa Didis to understand their challenges and encourage them to further develop entrepreneurship and utilize social media in their economic journey. The Shilpa Didi Mahotsav showcases handicraft creation from all over the country and provides an opportunity for the art-loving public to have a glimpse of different crafts being marketed by the Shilpa Didis. For Parikrama, Priya, Akashvani News, Delhi.
And now let's talk about a remarkable feat that has been achieved by Velayudham Srinivasulu. He's a distinguished artisan from Srikalahasti, Tirupati district, and he has been selected to represent India on the global stage. Well, he will be showcasing the exquisite Kalamkari art at the closing ceremony of the Paris Paralympics, which is scheduled from September 5th to 9th.
देशभर से केवल 5 कारीगरों को इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपनी कला प्रस्तुत करने के लिए चुना गया है। प्रतिष्ठित शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित वेलायुधम श्रीनिवासुलु आंध्र प्रदेश से इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्रीनिवासुलु ने केंद्र सरकार के प्रति बेहद खुशी और आभार व्यक्त किया। उन्होंने इतने महत्वपूर्ण आयोजन में कलमकारी कला को प्रस्तुत करने के अवसर को एक सम्मान का अवसर बताया।
Well, there is one more achievement which we will have to share, Sir Firozi. India has achieved a significant milestone in its space journey with the launch of its first reusable hybrid rocket, Rumi-1. This was developed by Tamil Nadu-based startup Space Zone India in collaboration with Martin Group. The rocket lifted off from in Chennai carrying a payload of 3 CubeSats and 50 Pico-satellites designed to collect data on global warming and climate change.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास हमारे लिए आज क्या खास जानकारी है।
Well, we'll begin with Nagaland. This is a story that we are bringing of an NGO from Nagaland which is named the Charity Club Multipurpose Society, formed by a group of 25 to 30 determined women whose shared dream and a desire for change has helped many and improve living standards in their community today. Back in the year 1989, in Vokha district of Nagaland, these determined women came together with the mission to serve the oppressed and underprivileged while promoting peace, justice and rights for all. Their vision was to build a world where equality and justice were not just ideals, but realities for everyone. Let's hear more about them from our Kohima correspondent.
In its early years, the Charity Club Multipurpose Society operated with limited self-generated funds, unaware of external funding opportunities. Despite this, they worked tirelessly to improve living standards in their community. Recognizing the need for more resources, the society officially registered under the Nagaland Societies Registration Act on June 15, 1994, gaining legal status and access to broader support. Today, the Charity Club Multipurpose Society has expanded to 60 members, including 6 board members and 2 advisors.
Hello, my name is John Chuizung. I am from Wokha. I'm currently working with the Charity Club Multipurpose Society as the General Secretary. I've been working here since 2021. The society is based in Wokha and it is one of the oldest NGO in the district. It was founded in the year 1989. However, it was registered in 1994. Initially, the society focused on areas such as agro-based farming, weaving, knitting, handloom, forestry, awareness and seminars on drug abuse and deadly diseases. In the recent years, the society is mainly focused on handloom and weaving as the sector is diminishing. Thankfully, there has been a positive push from the government and there have been many initiatives taken in uplifting the sector. We have recently completed the training of 57 candidates under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 and are currently mobilizing a new batch. We thank the government as well as the Northeastern Handicrafts and Handloom Development Corporation for the initiatives taken and for the opportunities being given.
As the Charity Club Multipurpose Society grew, so did its impact. Many who have passed through its program found employment with self-help groups, private enterprises, or even started their own businesses. The society has also recognitions for its efforts. In 2004, the society's chairperson, Malo Ism, was honored with the Bharat Excellence Award and Gold Medal, a testament to her leadership and the society's impact. Through the various initiatives, the Charity Club Multipurpose Society continues to foster a sense of community and pride among the people it serves. With Johanna Murray, this is Asonyo from Kohima for Parikrama.
अब आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान, जहां एक बहुत ही खास परंपरा का पालन किया जाता है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में हर साल अन्य जिलों के मुकाबले ज्यादा बारिश होती है, लेकिन इस बार जिले में मॉनसून में बारिश कमजोर रही। जिले में अब तक सामान्य से 33% कम पानी बरसा है, जिसे देखते हुए इस जिले की महिलाओं ने कल अपनी 100 साल पुरानी धाड़ परंपरा को निभाया। माना जाता है कि इससे भगवान इंद्र प्रसन्न होते हैं। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
बांसवाड़ा में महिलाओं ने पुरुषों की तरह धोती कुर्ता, सिर पर पगड़ी पहनकर और हाथों में लठ व तलवार लेकर धाड़ निकाली। सशस्त्र महिलाओं ने तामटिया से होते हुए बरकोटा छाजा के बागेश्वरी माताजी मंदिर में लोकगीतों के साथ पूजा अर्चना की। वहां से कथीरिया कांगलिया होते हुए अनास नदी के पास प्राचीन गौतमेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। माताजी मंदिर के बाहर सभी महिलाओं ने धारिये, तलवारें, तीर कमान, लठ लेकर लोकगीत गाते हुए गैर नृत्य किया। ये महिलाएं 10 से 15 किलोमीटर घूमकर वापस तामटिया के माला देवी मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना कर नारियल की आहुतियां दी। जैसे ही यह धाड़ निकली, अचानक मौसम बदल गया। बादल गरजने के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। धाड़ के लिए निकली महिलाएं भी बारिश में भीग गईं और उनकी मनोकामना पूरी हुई। परिक्रमा के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट।
वेल सरफरोजी, नाउअडेज प्लास्टिक इज सीन फ्लोटिंग इन द ओशंस, इट्स बीन इन द न्यूज डेली, राइट? एंड वी आर लिविंग इन एन एज वेयर प्लास्टिक इज ओमनीप्रेजेंट। फ्रॉम द मोमेंट वी वेक अप टू द टाइम वी गो टू बेड, plastic is woven into nearly every part of our lives. It's convenient, but also it comes with a hefty price. Detrimental effects on our health and our environment. And there is an interesting update which is shaping up in Gujarat. The Gujarat Pollution Control Board has launched an innovative campaign to curb plastic pollution and achieve a plastic-free Gujarat. We have a report.
Temples bustling with devotees often become hotspots for plastic waste. But thanks to the innovative campaign by Gujarat Pollution Control Board, this challenge is being met with creativity and technology. GPCB has installed cloth bag vending machines similar to ATMs at all the prominent temples across Gujarat, providing devotees with easy access to reusable cloth bags. Similarly, reverse vending machines for plastic bottles have been installed at 7 major ST bus stands and 1 railway station, which have already recycled over 9,500 bottles in just 2 months. Currently, 14 machines have been installed at prominent temples in the state, where devotees can now receive prasad in eco-friendly cloth bags from these machines by paying just 5 rupees per bag, either inserting 5 rupees coin or paying through UPI mode. Chairman of GPCB R.B. Barar said, vending machines have been installed to reduce plastic bag usage and promote cloth bags, making eco-friendly options more accessible and beneficial for everyone. He said the initiative has received a positive response from the devotees at the temples, with over 5,000 bags sold within 60 days. To further expand this initiative, GPCB is also planning to install similar machines at 250 Amul parlors across the state within next month. For Parikrama, this is Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे।
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के उल्लेख के बिना स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी पूरी नहीं हो सकती। देश के इन तीन महान सपूतों ने गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। 23 मार्च 1931 को तड़के जब इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी तो पूरा देश निराशा में डूब गया था।
आज हम आपके लिए शिवराम हरि राजगुरु की कहानी लेकर आए हैं, जिनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पूना गांव में पार्वती देवी और हरिनारायण राजगुरु के यहाँ हुआ था। उनके जन्म स्थान खेड़ का नाम उनके सम्मान में राजगुरु नगर रखा गया। वे अल्पायु में ही सेवा दल में शामिल हो गए थे। वे रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे।
राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के सहयोगी बन गए थे। उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स पर जानलेवा हमला किया। इससे पहले साइमन कमीशन के खिलाफ आयोजित मार्च के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी।
विदेशी सरकार ने राजगुरु को हत्या का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। फिरोजपुर में सतलुज नदी के किनारे हुसैनीवाला में उनका अंतिम संस्कार किया गया। हर साल हजारों लोग हुसैनीवाला में उनके स्मारक पर मां भारती के इन महान सपूतों को श्रद्धांजलि देते हैं।
आज की इस कड़ी में हम एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षाविद और पत्रकार केलप्पाजी केलप्पन नायर के बारे में भी बात करते हैं, जिन्हें केरल गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आज उनकी 132वीं जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1889 में केरल के कालीकट में हुआ था। के कलप्पन असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। मालाबार क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाते हुए उन्होंने कई मौकों पर गिरफ्तारी दी। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए पयानूर समुद्र तट पर मार्च किया और नमक बनाया।
उन्होंने जहां एक तरफ सामाजिक सुधारों के लिए संघर्ष किया, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने अस्पृश्यता और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ भी अथक लड़ाई लड़ी। उन्होंने केरल राज्य के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1952 में वे संसद के लिए चुने गए। अपने कार्यकाल के अंत में उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी और सर्वोदय कार्यकर्ता बन गए और केरल में भूदान आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। वे राज्य में कई गांधीवादी संगठनों के अध्यक्ष भी रहे।
आज ही के दिन 1911 में बंगाल प्रांत में कृष्णानगर में महान स्वतंत्रता सेनानी बीना दास का जन्म हुआ था। वे उन अनेक महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में अग्रणी भूमिका अदा की। बीना दास ने 21 साल की उम्र में ख्याति प्राप्त की जब उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हॉल में बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर नजदीक से 5 गोलियां चलाई। ये घटना 1932 की है जब संयोग से उसी दिन उसी स्थान पर बीना दास को स्नातक उपाधि प्राप्त करनी थी।
बीना दास ने इस घटना को अंजाम देने के लिए 9 साल तक कड़ी मेहनत की। जिसके पीछे अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश कब्जे से मुक्त देखने की तीव्र इच्छा थी। वे छत्रीसंघ नाम की वुमेन स्टूडेंट समिति की सक्रिय सदस्य थीं, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम किया था।
आज स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले गांधीवादी नित्तूर श्रीनिवास राव की जयंती भी है। उन्होंने मैसूर राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। श्रीनिवास राव का जन्म बेंगलोर में एक शिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था।
1930 और 1940 के दशक में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने कांग्रेस की मैसूर राज्य इकाई के लिए काम किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को आश्रय प्रदान किया। 1927 में जब महात्मा गांधी बेंगलोर गए तो श्रीनिवास राव ने गांधी जी से उनकी आत्मकथा का अनुवाद करने की अनुमति ली और अनुदित पुस्तक का नाम सत्य शोधन रखा।
And now it's time for the defense news capsule from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defense. The report has been filed by Broadcasting Officer Anand Saurabh.
हम मिल रहे हैं इंडियन आर्मी के उस वेटरन से जिन्होंने जब वर्दी पहनी तो देश सेवा के पैशन को जिया और आज वेटरन होने के बाद डिफेंस इनोवेशन को जी रहे हैं। आइए मिलते हैं रिटायर्ड सैन्य अधिकारी और एंटरप्रेन्योर मेजर समर टूर से।
जय हिंद। अ स्पेशल वोट ऑफ थैंक्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।
सबसे पहले हमें अपने बारे में बताइए।
So basically, I retired in 2021. I am Major Samar Tur. I joined the army in 2010 and I retired few years ago. So, you know, the army inculcated a lot of discipline and good habits for a lifestyle. And other than that, the courses that we did in the army are, you know, they're highly professional, like firing of missiles to handling of small arms weapon, platoon weapons, battalion support weapons. So there's so much that we get to learn, so much of money is being spent on us to lead our troops in war. So after my retirement, I took it upon myself because I am a very keen enthusiast on geopolitics and urban warfare environment. So keeping all that in mind, I found a very good opportunity, especially after the Russia-Ukraine conflict. I realized that the future of warfare is this, loitering munition and kamikaze drones, because nobody wants to put their own soldiers or troops in danger or in the line of fire. So let us put the machines in place of the soldiers to do that job. So I took a firm determination and I made up my mind that I'll join a firm and I'll help promote it and make it grow.
आपकी कंपनी किस प्रकार डिफेंस के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है?
So Zulu Defense is a Bangalore based firm. And me being part of board of the directors for this, it is a very great responsibility to give the country overall edge compared to other forces in the world. There is a lot of pressure because technology is forever evolving and changing. So keeping up with what the latest is, that is what the brainchild is. So I would like to give the credit to the whole team and staff of Zulu Defense, those 60 to 65 team members, because day and night they are up to learning what is the latest. They are unlearning what is old, and we are learning and we are implementing, we are integrating new software systems, new guidance systems, communication systems, anti-jamming softwares. So, you know, in today's warfare, what is the biggest enemy is time. The time is against us. So, with the team working 24/7, trying to deliver the best of the product to our tri-services, just to keep our country safe, our soldiers safe, and so that we can come out victorious in case eventuality of war occurs. So, we'll be able to deliver and add that punch to the iron fist of the tri-services. We've bagged few decent orders in terms of our kamikaze or suicide drones.
अमृत काल में ऐसे देशभक्त उद्यमियों की कहानी से ही हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे। परिक्रमा के लिए जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय से मैं आनंद सौरभ।
अब आपको देंगे खेल के मैदान की हलचल। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 38 वर्षीय धवन ने सोशल मीडिया पर रिटायरमेंट वीडियो साझा किया और अपने परिवार, कोच और टीम के सदस्यों को धन्यवाद दिया। जॉर्डन के एक और खबर भी है खेल की। जॉर्डन के अम्मान में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने 185 अंकों के साथ पहला टीम खिताब जीता। प्रतियोगिता में भारतीय महिलाओं ने 5 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते। और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। तो शगुन कहां से शुरू कर रहे हैं आज?
वेल, टुडे वी आर रिमेम्बरिंग कल्याण जी वीर जी शाह विद यंगर ब्रदर आनंद जी। ही वॉज वन ऑफ द लेजेंडरी म्यूजिक डुओज ऑफ हिंदी सिनेमा। बोथ ऑफ देम दे हैव बीन द लेजेंडरी म्यूजिक डुओज ऑफ हिंदी सिनेमा विद ओवर 250 फिल्म्स इन हिंदी एंड अ फ्यू इन गुजराती ऑल्सो। टू देयर क्रेडिट द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी वर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल म्यूजिक कंपोजर्स।
वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म सरस्वती चंद्र के लिए कल्याण जी आनंद जी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। साल 1992 में संगीत के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। आपको सुनाते हैं उनके कुछ मशहूर गीत।
जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए
चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
Well, today we are also remembering Dr. Homi N. Sethna, Indian nuclear scientist and a chemical engineer. It's his birth anniversary today. Dr. Sethna took over the leadership of BARC after the demise of Dr. Homi Bhabha in the year 1966 and was the chairman of Atomic Energy Commission, AEC, during 1972 to 1983. He was awarded the Padma Vibhushan in the year 1975.
आज बसवराज राजगुरु की जयंती है। ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। इन्हें लगभग 40 रागों का व्यापक ज्ञान था और इनके प्रदर्शनों की सूची में गजल, ठुमरी और ख्याल शामिल थे। संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें साल 1991 में पद्मभूषण और 1975 में पद्मश्री से नवाजा गया। पेश है उनका गाया ये राग।
Well, today we're also remembering Charles Robert Watts, English musician who was the drummer of the band Rolling Stones. He developed an interest in jazz at a very young age and joined the band Blues Incorporated. And listeners, you're listening to the track Paint in Black by their band.
आज अंजलि देवी की जयंती है। ये भारतीय अभिनेत्री और प्रोड्यूसर थी। इन्होंने मुख्यतः साउथ सिनेमा में काम किया। इसके अलावा इन्होंने प्रोड्यूसर के तौर पर अनारकली और परदेसी जैसी 20 सफल फिल्मों का निर्माण किया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गाना। आज दीप्ति भगवान शर्मा का भी जन्मदिन है। ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। 28 नवंबर 2014 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला प्रदर्शन किया। इसके साथ ही इन्होंने 188 रन बनाकर 12 साल पुराना भारतीय रिकॉर्ड भी तोड़ा।
Well, today we are also remembering Richard Samuel Attenborough, English actor, film director and producer. As an actor, he is best remembered for his film roles in Brighton Rock, I'm All Right Jack, The Great Escape, The Sand Pebbles, Dr. Dolittle, 10 Willington Place and also Jurassic Park.
आज नर्मद अथवा नर्मदा शंकर दवे की भी जयंती है। नर्मद ने नए विषयों पर पद्य और गद्य में रचनाएं की। 24 वर्षों तक वे पूरी तरह से साहित्य सेवा में ही लगे रहे। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सर फिरोजी और शगुन को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।